ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर स्वागत के लिए आभार हूँ। रंगोली की व्यवस्था इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा नाम पूरी पृथ्वी में सब गांव सब नागर में प्रचारित होगा, तो सब घर में भी प्रचारित होना चाहिए, सभी जगह में, जिम में भी। ये सत्संग केंद्र है नहीं? सोमवार शाम को सत्संग केंद्र होता है और बाकी समय जिम लगता है मैं चैंपियन नहीं होंगे। क्या हो इस बार, शायद अगला जन्म मेरा बहुत चुश्चर्य होगा। हाथी का शरीर मिल के मैं बहुत चुष्ट होगा, गजेंद्र जैसे। गजेंद्र उनका पूर्व जन्म में एक ऋषि थे, आप सब जानते हैं गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंध में। मालूम नहीं आजकल लोग जानते कि नहीं, पूर्व काल में सब लोग जानते थे नहीं वो गजेंद्र कौन है और भगवान विष्णु कैसे गजेंद्र की मोक्ष का साधित किया है। तो जीवन का उद्देश्य नहीं है तो हाथी जैसे बलवान होना, तो उद्देश्य है आध्यात्मिक बल लाना। खुद का प्रयास है आध्यात्मिक बल प्राप्त करना संभव नहीं है, कृपा से मिलते। शारीरिक बल वो उसका महत्व भी है, स्वस्थ अच्छी होने चाहिए, इसलिए क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये संस्कृत संस्कृति वचन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो वो कौन सा शास्त्र के है, वो प्रचलित शब्द था भारत में पहले, बहुत ऐसे पहले बहुत शास्त्रीय वचन तो आम बातचीत में बहुत चलते थे, आजकल तो नहीं। तो साधारण कहावत था शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसका मतलब कि वो पहले शरीर को देखना चाहिए क्योंकि शरीर का बल स्वस्थ होना चाहिए धर्म और साधन पालन करने के लिए। कौन से शास्त्र के है कोई जानते? कौन कोई शास्त्र के नहीं है, ये कालिदास कवि कालिदास कलेक् से, तो शास्त्र नहीं। सब कुछ जो संस्कृत में है तो शास्त्र नहीं है। संस्कृत में भी बहुत बकवास बोलना संभव है और बहुत राक्षस भी संस्कृत बोलते थे पूर्व काल में, मायावादी मायावादी कृष्ण अपराधी। तो फिर भी जब तक हम मानव शरीर धारण करते तब तक अवसर है कृष्ण भक्ति करना, param satya ke bare mein anusandhan karna sochna कि मैं कौन हूँ, कैसे इस भयानक हाल में हूँ, ये भयानक हालात में कैसे 84 लाख जीव जाति है और केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष और मोक्ष से अतिरिक्त भक्ति कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना की संभावना है। तो कृष्ण भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के पथ पर तो प्रथम शिक्षा ये है कि हम शरीर नहीं है, हम सनातन आत्मा है। साधारण शिक्षा भगवद गीता और उपनिषद शास्त्र। तो हम शरीर नहीं है, तो शारीरिक बल का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं है, जब तक हम सुख दुख स्वस्थ अस्वस्थ ये सब अलग अलग स्थितियों से प्रभावित है, तब तक शरीर की स्वास्थ्य अच्छी तरह रखना चाहिए जितने भी संभव हो। क्योंकि यदि हम प्रतिदिन दिन भर व्यायाम करेंगे जिम में, तो वो तो कोई गारंटी नहीं है कि हम स्वस्थ रहेंगे। और ज़्यादा व्यायाम करने से तो स्वास्थ्य का हानि होती है। लेकिन योगियों सभी योगियों के लिए भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सभी प्रकार के मतलब कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी व्यायाम करने वाले और भक्ति योगी सबके लिए भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं। ना चाष्णतस्तु योगोस्ति ना चैकान्त मनश्रतः। नेक्स्ट न स्वप्न न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, ज्यादा नींद लेना, कम नींद लेना, वो सब बाधा है योग पथ पर। उसके बाद श्लोक क्या है? विहार अत्याहार विहारस युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य योगो भवति दुःखः। तो सभी जीवन में तो सभी प्रकार के क्रिया में तो बैलेंस रखना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो साधारण क्रियाकलापों में और आहार में, नींद में, शयन में और विश्राम और विहार तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्राथमिक शिक्षा योग पथ के लिए है। परंतु हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम सनातन जीव है। देहात्म बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है कि लोग जो शरीर को आत्म परिचय करते हैं उसकी बुद्धि देहात्म बुद्धि बोलते हैं। अर्थात ऐसे ही सोचना, इस यही शरीर मैं हूं। तो सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। यदि हम किसी से पूछे पूछते हैं तो आप कौन है, तो क्या उत्तर देगा? मैं सनातन कृष्ण का दास हूँ। कौन ऐसे उत्तर देते? कोई नहीं। बोलते क्या कि मेरा नाम है संजीव गुप्ता, मैं गुप्ता नाम बोल के तो जात का बताने का जरूरत नहीं है, स्पष्ट है। और मेरा जन्म 25 साल के पहले दिल्ली में था, अभी सूरत में पढ़ाई कर। नहीं, कोई दिल्ली से सूरत नहीं आता है किसी काम के लिए नहीं। अमल साथ आया हूँ शिवरात्रि मेला में भाग लेने के लिए। नहीं, वो बात है कि सब लोग शरीर को अपना परिचय करते हैं और दूसरों को भी। भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, नहीं वो कास्ट, और अलग अलग जातियों में वो झगड़ा द्वेष होते, नहीं बहुत बड़ी समस्या। ये गुजरात में ज़्यादा नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत है, यूपी में बहुत होते, और गुजरात में भी है। वो जात बुद्धि है नहीं। मैं पटेल हूँ, पैसों वाला हूँ। वो सब नीच नीच लोग हैं, तो वो बुद्धि है। परंतु भगवत गीता से हम शिक्षा मिलती है कि कोई पटेल नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ऐसे कहते, कौन से श्लोक में? पटेल श्लोक भगवत गीता में, पटेल शब्द भगवत गीता में आते हैं? नहीं, वो सब नाम बोलना बहुत लंबा हो जाता ना। कोई पटेल नहीं है, कोई गुप्ता नहीं है, कोई महेश्वरी नहीं है, कोई जडे जडेजा नहीं है, कोई कितने कितने नाम है। तो संक्षेप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देहिनोस्मिन्यथादेहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, कि शरीर का क्या होता है? फायदा ना जान जन्म होते, जन्म होते शरीर का जन्म होते, उसके बाद क्या होते हैं? थोड़ा बड़ा होते युवावस्था, शैशव, यौवन, वृद्धावस्था, और उसके बाद युवावस्था, वृद्धावस्था, शवावस्था। कहा गया वो आदमी, वो कुछ दिन के पहले मेरे एक गुरु भाई से पूछा, वो एक प्रोफेसर इंग्लैंड में जिन जिनका पहचान था, वो मेरा गुरु भाई का प्रोफेसर नारासिम्हाचारी, तो दक्षिण भारत के है और इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो मैंने पूछा, तो वो अभी कहा है वो? उन्होंने कहा, तो मेरे गुरु भाई मुझको बताए कि वो 2 साल के पहले ही चला गया। कहाँ गया? कहाँ गया पटेल? कहाँ गया? हाँ, कहाँ गए ये सब? कोई नहीं जानते। जो इस जन्म में बड़े आदमी होते हैं, तो अगला जन्म में क्या स्थिति मिलेगी, तो कोई निश्चित नहीं है। ऊर्ध्वंगच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसाः। साधारण रीति है कि सत्वगुणी लोग ऊपर जाते, रजगुणी लोग वापस इस भूतल पृथ्वी पर आते, और तमगुणी नीच जन्म मिलते। तो लोग जो ज्यादा जिम में व्यायाम करते हैं और भगवद गीता की शिक्षा नहीं लेते हैं, तो भगवान की दया से उनकी इच्छा के अनुसार तो अगला जन्म में तो हाथी ऐसे शरीर मिलेगा जिसमें बहुत शारीरिक बल है, तो इच्छा के अनुसार। और जो कृष्णा के पास जाना चाहते हैं तो कृष्ण की कृपा से कृष्ण के पास जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि शरीर की पुष्टि उसका महत्व है, परंतु उससे आध्यात्मिक पुष्टिकरण उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस जन्म में बड़ा है मानव समाज की दृष्टि में, तो अगले जन्म में क्या होगा कोई पता नहीं है। साधारण सामान्यतः क्या होते हैं कि जो बड़ा है इस जन्म में, तो बड़ा होने से तो दाम्भिक होते, और क्योंकि दूसरे लोग उनको सम्मान देते हैं, वो सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई मुझको किसी भी बाधा नहीं दे सकते, और इसलिए बहुत साहस होते और बेशरम पाप कर्म करते। तो कैसे बड़ा हुआ, तो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, तो पुण्य कर्म से बड़ा पद मिलते, फिर दाम्भिक होते पाप करते और नीच जन्म मिलते, और इस प्रकार संसार चक्र चलते। जो आज स्वर्ग में बड़ा देव है, तो कुछ दिन के बाद तो क्रीमी कीट वृक्ष वैसे नीचावस्था में हो सकते। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्णा कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृ व्रता भूतानि यान्ति भूतेज और मद्याजिनो पि यान्ति माम्। जो देवगण की पूजा करते हैं तो देवगण के पास जाते हैं, जो पितृगण की पूजा करते हैं तो पितृगण के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं नहीं आज तक ऐसे लोग, कल शिवरात्रि है और शिव के भक्त तो शिव के गण गण बोलते, मतलब शिव के अनुगामी गण, तो ज्यादातर वो ही श्रेणी के है तामसिक। तो जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो भूत प्रेत के पास जाते हैं, और जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, और भगवान कृष्ण के पास जाने से क्या होते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। जो अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, तो यही शरीर चढ़ के कृष्ण के पास जाते और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। और देवगण के भक्तों उनका क्या हाल है, उनकी गति क्या है, तो देवगण के पास जाते, स्वर्ग जाते, और उसके बाद क्या होते, तैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। जो देवगण की पूजा करते तो देवलोक जाते, स्वर्गलोक, और वहाँ पर विशाल इंद्रिय सुख मिलते, और उसके बाद वापस आते यहाँ। और जो कृष्ण की निस्वार्थ शुद्ध भक्ति करते तो कृष्ण के पास जाते, और इस स्थिति का देखना और नहीं होते, वहाँ जाना है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद का आदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार हम टाउन टाउन गाउन गाउन जिम में भी, ये पहले बार मैं जिम में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, मेरे लिए कुछ नया है, अभिनव। सभी जगह में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, तो यही प्रचार होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। जो देवगण की पूजा करते देवगण के पास जाते हैं, या जो भूत की पूजा करते हैं तो भूत हो जाता है, और जो साईं बाबा की पूजा करते हैं साईं बाबा के पास जाते हैं। साईं बाबा कहाँ है मालूम नहीं, मालूम नहीं, संसार में एक जगह में है, क्योंकि केवल जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते कृष्ण के पास जाते और वापस नहीं आते, और सभी लोग का वापस आना है, तो साईं बाबा तो कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं था, तो जरूर तो वापस आया है। हाँ, और अगर मुक्त हो तो साईं बाबा से प्रार्थना करने का क्या फायदा होगा, तो मुक्त हो गया तो पूरा ब्रह्म सुख में लीन हो गया, और कोई दूसरा चिंता नहीं है, तो आपकी प्रार्थना नहीं, नहीं नहीं सुनेंगे तो कुछ भी फायदा, जैसे भी आपका विश्वास हो तो किसी भी कुछ भी फायदा नहीं होगा वो बाबा की पूजा करने से। और कोई भी शास्त्र में नहीं है कि साईं बाबा की पूजा करना, कैसे हो गुजरात में तो नहीं था, नहीं तो फैशन जैसे है ऐसे हो गया नहीं, तो आजकल क्या एक दो साल पहले से एक फैशन है कि वो सब युवक तो ऐसा हेयर स्टाइल है नहीं, वो जैसे वो सिर पर एक केक है ऐसे दिखते हैं नहीं, तो क्यों सब ऐसे रखते हैं? शायद अमल साथ में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, बड़ौदा सूरत वो फैशन वाले है, क्यों ऐसे क्यों ओ सब दूसरे लोग वैसे रखते हैं, तो ठीक है मुझे भी तो ऐसे रखना है, फैशन, इसको फैशन बोलते हैं। तो लोग देखते हैं कि वो ओ वो साईं बाबा की पूजा, ओ वो भी साईं बाबा, वो भी तो मुझे भी करना है, तो इसलिए हम भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं, जिससे लोग समझ लेंगे कि कृष्ण भगवान है। मथाह परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कृष्ण के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई भी का मतलब साईं बाबा कृष्ण के ऊपर नहीं है, और शिव भी कृष्ण के ऊपर नहीं है, कोई भी देवता, मनुष्य, दैत्य, राक्षस, आधुनिक कहते हुए भगवान बहुत है, नहीं कलयुग का एक लक्षण है कि हो जाए से वोट होते नहीं चुनाव, तो प्रधानमंत्री अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो चुनाव देना है, तो अगला भगवान कौन होंगे, तो साईं बाबा ऑलरेडी 10 साल हो गया, बहुत लंबा समय है, तो एक नया भगवान लाना है। तो ऐसे कुछ ऐसे ऐसा होते नहीं है, वो एक क्या वो श्री श्री बहुत जनप्रिय था उस समय, तो हो गया नहीं, अभी तो ज़्यादा जनप्रिय, यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं था ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग के भगवान है वो, क्योंकि उसका सेमिनार वो कम से कम 2,000 रुपया है प्रवेश करने के लिए, खाली बड़े बड़े मूर्ख जाते हैं इनके पास, वो बड़ा चीटिंग व्यापार है, तो एक सेमिनार लेना 2,000 रुपया 10,000, होशियार आदमी बहुत होशियार है, किसी पटेल से बहुत बुद्धिमान है पैसा कमाने में, कोई पटेल तो कोई पटेल तो भगवान नहीं बनाया अभी तक, नहीं वो क्या है ये सब पटेल मारवाड़ी तो बहुत पैसे कमाते हैं और ये सब चीटिंग भगवान लगते है वो, ऐसा भगवान तो अच्छा नहीं लगते जो मैं कहता तो। ठीक है, किसी की निंदा नहीं करना, तो यही बात हो, किसी की निंदा नहीं है, सच बोलना चाहिए, जो हिंदू धर्म में चलते आज का हाल कितने गलत फहमी है, कितने है कितने है कितने है, हाँ 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000, कितना है, कितना हिंदू है, हाँ कितने करोड़ है हिंदू दुनिया में, हाँ 33 करोड़ देवता, कितना हिंदू है, करोड़ करोड़, लगभग 80 करोड़ 90 करोड़, तो कितना गलत फहमी है, 80 यदि 80 करोड़ हिंदू है, 80 करोड़ हिंदू है, तो कितने गलत फहमी है हिंदू धर्म में, 80 करोड़ नहीं उसके ज़्यादा, क्योंकि सब लोग के मन में कम से कम 1 करोड़ गलत फहमी है, तो इस हरे कृष्ण, तो इसलिए हम भगवत गीता यथारूप का प्रचार करते, सत्यवाणी सत्यवाणी वो क्या है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान परम धर्म का सूत्र कहते हैं, सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और सब कुछ जो लोग बोलते धर्म है तो वो तो वास्तविक धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म है पूरी तरह काय मन वाक्य कृष्ण भगवान के चरण पर शरण लेना, वो सत्य धर्म है। तो यही प्रचार करने से शायद सब लोग तो पूरा संतुष्ट नहीं होंगे, यदि हम कहेंगे कि जो भी आप करना चाहते हो तो करो, खुशी रहो, तो उससे ही ऐसे प्रचार करने से क्या फायदा होता है, तो सब लोग वैसे ही करते हैं, वैसे ही शिक्षा देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग वैसे ही करते हैं। तो शिक्षा देना चाहिए कि कैसे हम इस बहुत दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके तो कैसे हम धर्म पालन करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम पूर्णतया सुखी होंगे, वो संभव है कृष्ण भक्ति में। तो भगवद गीता यथारूप के प्रचारक के बिना कोई प्रचार करते कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, कोई ऐसा नहीं बोलते, बोलते कि जिम जाओ। वो विवेकानंद ऐसा प्रचार किया था, नहीं वो जिम नहीं, उस समय जिम नहीं, वो फुटबॉल खेलो, ऐसा प्रचार किया विवेकानंद का प्रचार था वो भारत के युवकों को। तो भगवद गीता मत पढ़ो, व्यायाम करो, क्योंकि व्यायाम से शारीरिक बल मिलते हैं और बल बलवान लोग चाहिए भारत का विकास के लिए। तो यही प्रचार क्या आध्यात्मिक प्रचार है क्या? नहीं है। तो भगवद गीता यथारूप चैने में मूल रूप है, भगवद गीता के अनुसार आपका जीवन व्यतीत करो। सारल उपाय है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करना। और कीर्तन करने के साथ भगवद गीता से तत्व विचार सुनना चाहिए, क्योंकि संभव है कि कीर्तन करके भी तो मन में वो असंख्य गलत फहमी जो है रहेगा, और अगर मन में रहते हैं तो कीर्तन करने से हम पूरा कल्याण नहीं मिलेंगे। यदि हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं परंतु हम विचार करते हैं कि कृष्णा साई बाबा मैं सब एक ही है, तो वो तो भक्ति नहीं होगी। शुद्ध भक्ति का मतलब माम एकम शरणम रजा। तो भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं कि क्योंकि वे भगवान है और हम सब कृष्ण के अंश है, ममाई वंशो जीवलोक है जीव भूत सनातन। तो ये एक मत नहीं है, बहुत मत है नहीं। तो एक स्वामी एक बात बोलते, दूसरा स्वामी दूसरा बात बोलते, और इस प्रकार बहुत मत है, परंतु सच क्या है? सत्यवाणी हम भगवद गीता से मिलते हैं, और सत्यवाणी है कि कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास हैं। और इस ज्ञान के अनुसार, इस ज्ञान तो हृदय में पूरा ग्रहण करके हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी होगी तो कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं है कि शरीर बलवान होगा। हरे कृष्णा। अगर किसी का Prashna. Prashna hai to jarasa abhi puche tora. Dere ho gaya. Samanyata ye satsang ka. Aramb kansa samay hote 8 baje. Sawa 8 baje. Tora dere ho gaya aaj. Bhautik sangsar mein kabhi bhi kuch bhi ho sakte. Bara dekhat, chota dekhat. Aaj kao hum. O makan se nikalke dekha ki wo dusra tala lagaya. Aur uski chabi nahi hai hamare paas. Isliye hum deri aaye hain. Aur thoda deri bhi the nikalna. To kabhi bhi kuch bhi ho sakte. Isliye sadaiva prastut hona chahiye. Antim pariksha ke liye. Antim pariksha kya hai? Mrityu, mrityu. Sadhan kara, bhajan kara, marte janle hoy. Bengali mein ek kahavat hai ki usab sadhana, puja, bhajan to mrityu ka samay wo parikshit hoga. To isliye hum pratidin sadhana karna chahiye, shravan, kirtan. Hare Krishna. To kisi ka prashna? Apati? Nishtur vachan, jo main bolta hoon.